மங்களம் பகவானோ மங்களம் வாசமோகை மங்களம் குண்டு கொண்டாத்திரோ
தேனோஸ்து மங்களம்
சர்வ மங்கள மங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரியம் சதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயம் ஜெயசி சாஸ்திரம் ஜெயம் ஜெயசி சாஸ்திரம் நம சமய சாராய इस दुनिया का यह अद्वितीय परम आध्यात्मिक ग्रंथ ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाला यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समझता है। श्रीकाली गायक भगवान आत्मा की जैसी चर्चा यहाँ मिलती है वैसी चर्चा दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। ये ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। ये भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? ये भगवान आत्मा इस प्रकार निर्मल है, यद्यपि आत्मा की निर्मलता की चर्चा में कुछ सांख्य और वेदांत दर्शन वाले भी करते हैं, वो भी आत्मा को शुद्ध बताते हैं, लेकिन यहाँ अनेकांत स्वरूप रखकर उस आत्मा की परम निर्मल स्वरूप का चित्रण किया है। बड़ी सुंदर गजब बात कहते हैं कि हे जीव, तू विकार को नष्ट करना चाहता है, हम कैसे विकार तेरे में रहेंगे? विकार को नष्ट नहीं करना, विकार से भेद विज्ञान करना। अभी तक इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी कि हम विकार को नष्ट करने की कोशिश में लगे थे। देखो, आप नष्ट करना और भिन्न अनुभव करना, ये दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। जब आप भिन्न अनुभव करते हैं तो नष्ट तो विकार पहले हो जाता है, इसलिए विकार को नष्ट करने के चक्कर में नहीं उलझना, विकार से भेद विज्ञान करना। ये संवर अधिकार, इस अधिकार में भेद विज्ञान की बहुत सूक्ष्म चर्चा की गई। इसकी ये प्रारंभिक गाथाएं प्रदेश भेद की चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में यदि किसी भी समय काल के देर साल से अध्ययन करने वाले से ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राग और ज्ञान के प्रदेशों को भिन्न भिन्न बताया गया हो, यहाँ क्रोधादि को और आत्मा को भिन्न भिन्न बताया गया हो, जहाँ उनमें प्रदेश भेद की चर्चा की गई हो, तो कहेंगे वो समय काल के संवर अधिकार की प्रारंभिक तीन गाथाएं हैं जिनमें राग और ज्ञान के प्रदेश भिन्न बतलाये गए। क्या कहते हैं? देखो, आप कैसा स्वरूप बतलाते हैं, कैसे प्रदेश भिन्न, बात थोड़ी सूक्ष्म है, गंभीर बातें है, ऊपर ऊपर से पकड़ में आए ऐसी नहीं। क्या सच में इन दोनों के प्रदेश भिन्न? क्या सच में ऐसा है कि राग दूसरे प्रदेशों में होता हो और ज्ञान दूसरे प्रदेशों में होता हो? वस्तु स्थिति क्या है? राग कहाँ पैदा होता है? उज्जवल में, आत्मा में पैदा होता है पक्का, बिल्कुल। उज्जवल में तो होता ही नहीं है, कहीं कहीं शास्त्रों में उसे पुद्गलकारी कह दिया जाता है। राग को कहीं कहीं पुद्गलकारी कहते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि वो पुद्गल में हुआ होगा, होता तो आत्मा में ही है, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे पुद्गल का कहते हैं। राग को पुद्गल का क्यों कहते हैं? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से हुआ। अरे, पैदा कहीं भी हो, जिसने जिसमें अपनापन किया वो उसका, बस यही सी बात है। एक सीधा सच्चा फार्मूला है, जिस फार्मूले से बात स्पष्ट ख्याल में आती है कि कौन किसका है।
बोलो,
बच्चे अपने हैं या नहीं, पत्नी अपनी है या नहीं, भाई मेरा है या नहीं, ये परिवार मेरा है या नहीं, किसका किसके साथ अपनापन है, बोल। कौन किसको अपना मानता है, वो उसका। मिसाल शरीर मेरा है या नहीं, बताओ शरीर तुम्हें अपना मानता है? शरीर तो मुझे अपना मानता ही नहीं है, तो शरीर मेरा कैसे हो सकता है? ये भेद विज्ञान की चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ। कौन किसका, ये रागादिक का अपनापन, ये रागादिक का लक्ष्य किसके ऊपर जाता है? पर के ऊपर जाता है। तो जिन रागादिक का लक्ष्य पर पदार्थों के ऊपर जाता हो, वे रागादिक अपने नहीं हो सकते। यद्यपि ये रागादिक के भिन्नता की चर्चा इस ग्रंथादी रात समय कार में कोई नई नहीं हुई है, समर अधिकार में प्रारंभ से चलती आ रही है। कर्ता कर्म अधिकार से ही भिन्नता की चर्चाएं कर रहे हैं, भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और पीछे उसके पहले जीवा जीवाधिकार में भी इस प्रकार की चर्चाएं की। तो बहुत जगह समय सार में कदम कदम पर ये बातें कही है, फिर भी ये प्रदेश भिन्नता की बात कहकर के कुछ नई बात यहाँ आ गई, जो बात और कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि समय सार के अतिरिक्त दूसरे किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलती।
हाँ,
गई प्रदेश भिन्नता की बात। प्रदेश भिन्नता का मतलब जानते हैं, दो वस्तुएं न्यारी न्यारी हो गए, दोनों का प्रदेश माने क्षेत्र, एरिया। प्रदेश क्या चीज है? आकार, स्पेस, द्रव्य का स्पेस, द्रव्य का स्पेस। लेकिन कैसा स्पेस? द्रव्य का ऐसा स्पेस जो छोटा से छोटा हिस्सा हो वो प्रदेश कहलाएगा। क्षेत्र का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाएगा। आप कह रहे हैं जैसे इसके प्रदेश अलग है और इसके प्रदेश अलग है, इन दो चीजों के प्रदेश अलग अलग समझ में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर रखी हुई है। शरीर और आत्मा के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, ये फिर समझ में आती है बात। दोनों वस्तुएं अलग अलग है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति और क्रोध की उत्पत्ति, ये दोनों अलग अलग कहते माने अलग अलग जगह पर। क्रोध अधिक विकारी भाव तो आत्मा को छोड़कर के कहीं दूसरी जगह पर उत्पन्न होते हैं, कभी किसी जड़ पदार्थ में, कभी किसी पुद्गल पदार्थ में, कभी किसी अचेतन पदार्थ में ये राग आदि उत्पन्न हुए हो तो बताओ, ये राग दशाएं क्रोध कहीं किसी दूसरे पदार्थ में उत्पन्न हुए। आप कितना भी अपनापन करते रहो इनके साथ में, जड़ पदार्थों के साथ में, इनका कभी आपके प्रति अपनापन हुआ क्या? शरीर ने कभी तुम्हारे को अपना माना क्या? हम तो शरीर को अपना मानते हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों न्यारे न्यारे हैं। क्रोध पे लगाओ तो कैसे हो सकता है? आत्मा के जिन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान पर्याय है, आत्मा के उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में क्रोध पर्याय है। आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों के प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों अपने अपने में रहते हैं। ज्ञान ज्ञान में रहता है और क्रोध क्रोध में रहता है। अरे ज्ञान में क्रोध नहीं आता और क्रोध में ज्ञान नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे में नहीं होते। ये तो भेद विज्ञान करा रहे हैं यहाँ पर। इन गाथाओं के अंदर क्या बात कही है? उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग था। ये पहली गाथा 181 नंबर गाथा, उपयोग में उपयोग है। उपयोग क्या चीज? उपयोग में उपयोग है, चलो दो जगह उपयोग है, और दोनों उपयोग का अर्थ यदि आप ज्ञान दर्शन करते हैं तो भी चल सकता है, और उपयोग का अर्थ एक जगह पर ज्ञान गुण और एक जगह पर्याय करते हैं तो भी चल सकता है, पर एक जगह पर उपयोग का अर्थ उपयोग स्वभावी आत्मा करें और दूसरी जगह पर ज्ञान पर्याय करें तो भी चल सकता है। उपयोग के तीन तरह के अर्थ हो सकते हैं। उपयोग माने क्या? सुबीरों को मैंने ज्ञान की मर्याद फैला, फिर दूसरा उपयोग का अर्थ उपयोग वो लक्षणम, तो वो पर्याय नहीं वो गुण है। ज्ञान आत्मा का जो गुण है उसे कह दिया हमने उपयोग वो लक्षणम, वो आत्मा का लक्षण है, तो पर्याय कभी किसी वस्तु का लक्षण नहीं होती। उपयोग वो लक्षणम कहा, इसका मतलब ज्ञान गुण आत्मा का लक्षण है, ठीक है। और फिर कहा उपयोग उपयोगी उपयोग स्वरूप वो आत्मा, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ही, तो उपयोग ही शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में भी हो सकता है। अब तीनों जगह लगाओ जरा धीरे धीरे, उपयोग में उपयोग है, एक ऐसा करो ये उपयोग माने त्रिकाली गुरु ज्ञान भगवान आत्मा जीव तत्व ये उपयोग स्वरूप, और उसमें उपयोग है, उपयोग माने ज्ञान की पर्याय। यदि हमारे ज्ञान की पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, जिस ज्ञान पर्याय का विषय अपना ज्ञाय आत्मा बना हुआ है, तो फिर राग कहाँ है, फिर क्रोध कहाँ है, क्रोध और रागादि के अनुपत्ति का क्या हेतु है, क्रोध और रागादि उत्पन्न नहीं होते क्या हेतु है, वो अपने ज्ञाय भगवान आत्मा से भिन्न है या कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जिस उपयोग में उपयोग प्रभावी भगवान आत्मा होता है उस उपयोग में क्रोध भी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान पर्याय अपने आप में दो को समाहित नहीं कर सकती, एक पर्याय का विषय एक ही हो सकता है, श्रद्धा के विषय दो नहीं हो सकते, ज्ञान के विषय दो नहीं हो सकते, एक समय की पर्याय दो चीजों को मैं उलझ नहीं सकती। यदि उपयोग आपके उपयोग प्रभावी भगवान आत्मा में है तो फिर उपयोग पर पदार्थों में नहीं हो सकता। ये सब जीवों के लिए काम होगी बात,
फिर भी उनके हाथ में तो
अरे साहब ये जो लोका लोग झलकते हैं, ये लोका लोग झलकना ये झलकन है, उपयोग उनका अपने स्वभाव नहीं है। आप कहेंगे स्वप्न प्रकाश के स्वभाव है साहब अपना, और पर दोनों ये तो ज्ञान का स्वभाव है ना, स्वप्न प्रकाश अपने को भी जानना और पर को भी जानना, ये दोनों को युगपत जानना ये ज्ञान का स्वभाव है। कि नहीं नहीं उपयोग माने एकाग्रता की बात कर रहे हैं, उपयोग माने आपकी जुड़ान की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं आपका उपयोग कहाँ है, तो इसका मतलब हमारे ज्ञान पर्याय का जुड़ान किधर है, चित्त कहाँ है, तो एक ही जगह पर होगा। बहुत सुंदर कथन कहता हूँ आपको, सुनो आप। उपयोग के दो प्रकार हैं, जैसे ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। चर्मस्तों के लिए हम बात करें तो जिस समय ज्ञान उपयोग होता है उस समय दर्शन उपयोग नहीं होता, ज्ञानोपयोग की यदि हम बात करें उसमें भी, तो जिस समय मत्ति ज्ञानोपयोग होता है उस समय श्रुति ज्ञानोपयोग नहीं होता, जिस समय अवधि ज्ञानोपयोग होगा उस समय मने प्रिय ज्ञानोपयोग नहीं होगा, माने मत्ति श्रुति अवधि मने प्रिय एक समय में एक ही ज्ञानोपयोग हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं किताब सिद्धांत में तो ये कहा है कि एक जीव को एक समय में चार ज्ञान हो सकते हैं, मत ईश्वर का भी मैंने कही चार ज्ञान एक जीव को एक साथ हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि चार ज्ञान एक साथ हो सकते हैं तो चार का उपयोग एक साथ नहीं हो सकता, श्रुति ज्ञान तो मत ज्ञान पूर्वक होगा, जिस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहा होगा उस समय मत ईश्वर का प्रयोग नहीं कर रहा होगा। उपयोगात्मक दशा में मति श्रुत एक समय में एक ही होगा, चलो कोई बात तो नहीं, एक समय में एक तो हो गया, चलो मति ज्ञान तो नहीं नहीं, मति ज्ञान भी जिस समय स्पर्श इंद्रिय से हो रहा है उस समय रत्न इंद्रिय से नहीं होगा, जिस समय रत्न इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान प्रयोग हो रहा है उस समय घ्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय संबंधी नहीं होगा। बोलो कोई समझ में आता है, चलो कोई बात तो नहीं, स्पर्श इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है तब तो ठीक है, कि नहीं स्पर्श इंद्रिय के संबंध में भी जिस समय हल्के का ज्ञान होता है उस समय भारी का नहीं होगा, जिस समय रूखापन उपयोग का विषय बनता है उस समय चिकनापन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श गुण की तो मुख्य रूप से आठ पर्याय गई है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा गरम ठंडा गरम क्या बातें थी, कितना सूक्ष्म है उपयोग। आप कहेंगे कहा पंडित जी ये बातें हमारे को जैसे नहीं रही है क्योंकि हम कई काम करते हैं एक साथ, उनसे बात भी करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, कभी कभी खाना भी खाते रहते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, सब सब काम एक साथ होता रहता है, मुंह में कुछ चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, ये सब होता है ना, हाथ अलग सब सब अलग अलग चल रहा है, ये सब एक साथ चल रहा है, अलग अलग काम एक साथ हमारे होते हुए देखे जाते हैं। और आप कैसे हो, इतना सूक्ष्म उपयोग। यहाँ जी आप पहले ये निर्णय करें कि उपयोग कितना लंबा होता है, उसका उपयोग एक समय की पर्याय, हम एक समय की पर्याय है और प्रत्येक समय की पर्याय यदि अलग अलग बातों को विषय करे तो कितने विषय हो जाएंगे एक सेकंड में, आपको तो मालूम भी नहीं चलता हमारा उपयोग कहाँ चला जाता है, मालूम भी नहीं चलता मुझे। ज्ञान की पर्याय इतनी सूक्ष्म है, ये उपयोग इतना सूक्ष्म है, समय इतना सूक्ष्म है कि हमारे पकड़ में नहीं आता। सेकंड के असंख्यात में भाग काल समय का है, एक सेकंड के असंख्यात में भाग काल एक सेकंड और उसके असंख्यात हिस्से, दस बीस हिस्से करने की बात नहीं कह रहा हूँ, सौ हजार हिस्से करने की बात नहीं कह रहा हूँ, असंख्यात हिस्से करो उस सेकंड के, इतनी देर में उपयोग बदल जाता है, आप क्या पकड़ेंगे। इसलिए हमारा उपयोग एक समय में एक ही विषय को जानने में प्रवृत्त होता है, ये वस्तु स्थिति। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस उपयोग का विषय, जिस ज्ञान पर्याय का विषय अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा हो, भगवान आत्मा हो, गैस आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, उपयोग उपयोग में लगा हुआ हो तो क्रोध आदि में उपयोग नहीं हो सकता। जिसका आत्मा में उपयोग हो उसका विषयों में उपयोग नहीं हो सकता, जिसका चैतन्य में उपयोग हो उसका व्यापार में उपयोग नहीं हो सकता, जिसका खाने में उपयोग हो उसका टीवी में नहीं हो सकता। आप कहते हैं साहब हम तो खाते खाते दोनों काम करते हैं, ये असंभव है, असंभव है, क्या कह रहे हो आप, कह रहे बैठो पंडित जी हम बताते हैं आपके साथ में, क्या सुनो हम आपको कहेंगे उंगली हिलाओ क्या और मुंह चलाओ, तो ये उंगली हिलेगी तो आपका मुंह नहीं चल सकता, ये समझ नहीं ले आपको, बहुत बहुत बारीकी है सर, हम पकड़ में नहीं आ सकती ये बात, आपका दो दो काम एक साथ नहीं कर सकते आप, समय इतना सूक्ष्म है अपने आप बदलता रहता है, सेशन तो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए यहाँ जो उपयोग में उपयोग पल की बात कह रहे हैं, आप लगाओ ज्ञान गुण में, फिर हमने द्रव्य की बात कही, द्रव्य के प्रति जिस पर्याय का समर्पण है ज्ञान पर्याय का, उसको हमने कहा उपयोग में उपयोग है, हमारी ज्ञान पर्याय का समर्पण जिस त्रिकाली ध्रुव क्या है भगवान आत्मा में है, हमने कहा ये उपयोग कहा है आपका, बोले उपयोग में पहला, उसमें क्रोध आदि में नहीं हो सकता उपयोग। आप दूसरी बात कहते हैं कि उपयोग में उपयोग है, बोले ये जो ज्ञान पर्याय है ये ज्ञान पर्याय ज्ञान में ही है, ये ज्ञान पर्याय दर्शन से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये ज्ञान पर्याय चारित्र नामक गुण में उत्पन्न नहीं हो सकती, तो ज्ञान पर्याय कहाँ उत्पन्न होगी बताओ, ज्ञान गुण में उत्पन्न होगी, और क्रोध कौन सी पर्याय है, कौन से गुण की पर्याय है, ये विभाव है, ये चारित्र गुण की पर्याय है, निकारी पर्याय, क्रोध आदि के चारित्र गुण की निकारी पर्याय है, तो क्रोध आदि कहाँ उत्पन्न होंगे, जो जिसकी पर्याय होगा वो उसमें उत्पन्न होगा, तो क्रोध उत्पन्न होता है चारित्र गुण की पर्याय में और ज्ञान उत्पन्न होता है अपने ज्ञान गुण की पर्याय में, तो दोनों का उत्पत्ति स्थल अलग अलग है, इसलिए प्रदेश भी थोड़ी बारीक बातें नहीं, कोई इधर उधर की हंसी मजाक की कोई बात नहीं है, बिल्कुल वस्तु स्वरूप की चर्चा चलती है,
एक ही प्रदेश में उत्पन्न होते हैं,
गुण की अपेक्षा से अलग है, गुण की अपेक्षा से अलग अलग है। माने ज्ञान गुण की पर्याय वो ज्ञान पर्याय है और चारित्र गुण की विकारी पर्याय वो क्रोध राग विकारी पर्याय है। एक पर्याय दूसरी पर्याय की नहीं होती। ये इन्होंने यहाँ जो तर्क दिया है अमृतचंद्र स्वामी ने इन गाथाओं में इनके प्रदेश भिन्नता के संदर्भ में, वो सबसे बड़ा तर्क दिया है आधार आदेश संबंध का। उस पर्याय का आधार कौन है, वो कहाँ उत्पन्न होती है, उसका बेस क्या है, ये बताओ। ज्ञान पर्याय का आधार क्या है, ज्ञान गुण। माने ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण में ही उत्पन्न होती है, ज्ञान गुण का ही परिणाम है, वो विकार का परिणाम नहीं है, वो चारित्र गुण का परिणाम नहीं है, ये सुख गुण का परिणाम नहीं है। और राग क्रोध आदि पर्याय बोले वो चारित्र गुण का ही परिणाम है, वो किसी दूसरे गुण का परिणाम नहीं है। क्या स्वाधीनता की बात करते हैं, क्या भेद विज्ञान करा रहे हैं। अभी हमारे मोटी बुद्धि में इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये चौड़े दिखाई देने वाले पर पदार्थ मेरे नहीं है, ये इन संयोगों को अपना मान बैठा है, फिर कभी शरीर में आकर के अटक जाता है, कभी कहता है ये मेरे हैं, कभी कहता है ये मेरे हैं, कभी कहता है ये मैं हूँ, पागलों जैसी बातें करता है। हम कह रहे कौन किसका है, आधार आधेय संबंध जहाँ होगा वो वस्तु में एकता होगी, और जहाँ आधार आधेय संबंध नहीं है वहाँ एकता नहीं है। कौन किसके आधार से है ये बताओ, ये किसके आधार से है ये। तो आप कहिए पंडित जी ये टेबल के आधार से है, क्या कहेंगे टेबल के आधार से है, बोले तो ये मान्यता मिथ्या मान्यता किताब। ये संपूर्ण लोकालोक के जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ आकाश के आधार से है, इन सबको जगह किसने दी, अरे आकाश ने जगह दे रखी है इन सबको। हमारे संपूर्ण लोक के पदार्थों को जगह देने वाला कौन, बोले आकाश द्रव्य, वो सबको जगह देता है, सबको आधार है कि इस धोखे में मत रहना, सब अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी में नहीं रहता, आकाश आकाश में रहता है, आत्मा आत्मा में रहता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है, धर्म धर्म अपने में रहते हैं, एक दूसरे में नहीं रहते, एक दूसरे में रहते हैं। ये जो व्यवहार है ये व्यवहार व्यवहार कहलाता है, कथन करने में भले ही कहा जाए लेकिन वस्तु स्थिति यही मान करके चलना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। देखो मूल रसायन पढ़ता हूं मैं, क्या कहते हैं, उगोगे उगोगो गुहा दिशु नक्सी को भी उगोगो कोहो कोहे के वही उगोगे नक्सी कलु कोहो और ना को कोहो को कोहे उपयोग में क्रोध नहीं। ये पहली गाथा हुई, फिर दूसरी में अठ्य विधि कर्म और नौ कर्म की बात करते हैं। इस प्रकार का जो अविपरीत, इस प्रकार विपरीतता से रहित अभिप्रीत ज्ञान नाणम जय्यादु हो दीजी वस्त्र, ऐसा ज्ञान जीव को हो जाता है क्या, तो क्या होता है, तैयार किंचित उवधि भावम उभोग सुदप्पा, तैयार किंचित उवधि, तैयार किंचित उवधि भावम उभोग सुदप्पा, तो ऐसा जीव उपयोग के अतिरिक्त और क्या करे बताओ, कुछ भी नहीं करता। ज्ञान क्रिया ज्ञान ही करे अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे यो निश्चय परवान। द्रव्य कर्मों का कर्ता पुद्गल है और ज्ञान क्रिया का कर्ता ज्ञानी है। क्या करूं मैं जानने के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता, ये जानना हार जानने के अलावा दूसरा क्या काम करे। आश्चर्य होता है जब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि समझ नहीं आता, सारे ज्ञान का काम बहुत कठिन काम है। आप चाहो तो पत्थर ढोरा हमारे से मुझे उठा सकते हैं, आप चाहो तो चाहे जितने पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन समझने समझाने का काम ये थोड़ा सा वजनदार काम ये नहीं हो सकता, उपयोग वाला है। दूसरे काम करना भी आसान लगता है, यहाँ कह रहे हैं जानन हार पता, ये तेरा सहज काम जानने के अलावा कोई काम करता ही नहीं। ये भेद विज्ञान करो मैं क्या क्या काम करता हूँ, दुकान चलाता हूँ कि नहीं चलाता हूँ, बिजनेस करता हूँ कि नहीं चलता हूँ, शरीर चलाता हूँ कि नहीं चलाता हूँ, गृह की चलती है कि नहीं चलती है, मैं खाने वाला कि खाने वाले को जानने वाला, मैं नहाने वाला कि नहाने वाले को जानने वाला, मैं बोलने वाला कि बोलने वाले को जानने वाला, ये जाना ना है, ये बोलने वाला नहीं है कि बोलने वाले को जानने वाला है। हर समय ऐसा भेद विज्ञान करते कोशिश तो करो, भेद विज्ञान करेंगे तो ये भिन्नता ख्याल में आएगी हमारे। क्रोध करने वाला भी नहीं हूं मैं, क्या जब बात कहते हैं क्रोधा भी क्या करता ज्ञान नहीं हो सकता, उपयोग में उपयोग है क्रोधा भी में नहीं। देखो जरा जिसका पद्यानुवाद पढ़ता हूँ बहुत सरल है, गाथाएं तो बहुत सरल है, आचार्य कुंड कुंड की गाथाएं कितनी सरल है, आप मूल मूल गाथाएं पढ़ो तो आप तो नहीं रहे सरल बातें मिल जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता करता नहीं है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य है अपने अपने में रहते हैं, तेरी परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब हो जाऊं, बातें तो समझ में आती है, बस मोटी बुद्धि से समझ में आ गया ऐसा है, पर द्रव्य मेरा नहीं है। अभी ये बातें कितनी सरल है, देह चेतन भिन्न है, देह चेतन की भिन्नता की बात, ये एक है ये व्यवहार का कथन है, ये एक नहीं हो सकते, कितनी सरल गाथा है, सब गाथाएं बहुत सरल है। देखो मूल गाथा का पद्यानुवाद पढ़ता हूँ बहुत आसानी से समझ में आएगी बात, उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना, अष्टविधि द्रव्य कर्म में नौ कर्म में उपयोग ना, इसी तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना। दो गाथाएं कह दी और दो गाथाओं के अंदर भेद विज्ञान करा दिया, भाव कर्मों से द्रव्य कर्मों से और नौ कर्मों से, और इन तीनों से भेद विज्ञान करा करके फिर तीसरी गाथा में क्या कहते हैं, विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, इस तरह का ज्ञान हो इस जीव को वेद विज्ञान बरतते हुए, विपरीतता से रहित इस जीव को जब इस प्रकार का ज्ञान होगा तब क्या होगा, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा, तब ये आत्मा उपयोग के अतिरिक्त और कुछ भी ना करे। आप सोचो आज तक मैं ये समझ रहा था कि ये मेरा काम है इसलिए मैं उसकी तरफ दौड़ रहा था, और आज समझ में आया ये मेरा काम नहीं है तो फिर क्यों करूंगा भैया, ऑफिस में जाता है काम करता है भाग दौड़ करता है मेहनत करता है, ये सब होते हुए दिखाई देते हैं सारे काम, और आज पता लगा कि वो ये तो मेरा काम था ही नहीं, मेरी जो लिस्ट है काम की या मेरी जो जिम्मेदारी है जवाबदारी है उसमें तो ये शामिल ही नहीं है, मैं जबरदस्ती काम कर रहा, ये काम तो उसका है। देखो जो व्यक्ति जिस काम को अपना काम समझता है वो व्यक्ति उस काम को अपने आप शुरू कर देता है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आपको यदि ये लगता है कि झाड़ू लगाना मेरा काम है तो दो उठती झाड़ू आपके हाथ में आ जाती, आपके हाथ में क्यों नहीं आती, मैंने क्योंकि आपको लगता है ये मेरा काम है, कितनी प्रैक्टिकल बात है। यदि आपको ये लगता है कि ये काम मेरा है तो आप उस काम को करेंगे, और आपको पता है कि ये मेरा काम नहीं है केवल इसका काम है मैं नहीं करूँगा, वो करेंगे। खाना बनाने का काम ये मेरा नहीं है, तो जिनको लगता है कि ये मेरा काम है वो काम करते। अब हमने कहा कि रोजाने का काम तुम्हारा है कि जानने का काम तुम्हारा है, पहले ये समझ करो तुम्हारा काम कौन सा है। इतनी उठापटक चलती हुई दिखाई देती है, क्या ये सब मेरा काम है? ये मेरा काम है। जैसे भगवान बनने की ताकत है, तो भगवान बनने वाला यह तत्व भगवान आत्मा ये भिखारी बना है, ये अपराधी बना है, तीन लोग का नाश होने वाला भिखारी जैसे काम कर रहा है, झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। सोचो तो सही आप, कौन कौन सा काम मेरा काम है? अरे पंडित जी ऐसा उपदेश जो मेरे से लड़के काम कौन करेगा? आप यदि इस प्रकार का उपदेश दोगे तो फिर कौन भोजन बनाएगा, कौन पकाएगा, कौन साफ सफाई करेगा? ये सब घर के काम तो अपने को ही करने पड़ेंगे ना। कि नहीं, ये जड़ के काम है जो जड़ में पैदे होते हैं। मैं इन क्रिया का करता नहीं, ये ज्ञानी के हृदय में भेद विज्ञान की अविरल धारा बरसती है। उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी न करे तब आत्मा। दो बातें आ गई यहाँ, एक बात तो ऐसी कि उपयोग उपयोग के अलावा कुछ खाता नहीं, एक बात, और इस तीसरी गाथा ने कह दिया फिर नहीं करे। फिर साथ जब करता ही नहीं है तो नहीं करेगा, क्या सवाल है? तो अलग अलग बातें होगी ना। पहले तो ऊपर कह दिया कि भाई उपयोग उपयोग का ही काम करता है, ज्ञान ज्ञान का ही काम करता है, एक तरफ तो ये बात कह दी, और दूसरी तरफ कह दिया कि ये बात जब समझ में आएगी तो आप ज्ञान के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करोगे। दूसरा काम नहीं करोगे तो करते थे क्या? मानते थे, ये पॉइंट है यहाँ, ये कहना चाह रहे हैं। सर्द में बहुत सूक्ष्म बात चलती है, ये बारीक बात चलती है कि ज्ञान पर्याय किसकी है ये बताओ, ये क्रोध पर्याय किसकी है ये बताओ, ये क्रोध किसका है, इस क्रोध का कर्ता कौन है, इस क्रोध का स्वामी कौन है, इस क्रोध का मालिक कौन है, और जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है उस ज्ञान पर्याय का स्वामी मालिक कौन है? ये दो चीजें हमारे को ख्याल में आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, राग भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है। इन दोनों चीजों में इनका कर्ता कौन कौन है ये निर्णय करके बताओ। हम कैसे निर्णय करें? करो विचार, कौन किसका है, कौन कहाँ उत्पन्न हो रहा है, कौन किसके लक्ष्य से उत्पन्न हो रहा है। ये बहुत सटीक बात है, माने समझ लीजिए आप, घर में उत्पन्न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहता हूँ पुत्र किसका, माता का या पिता का? ये माता पिता दोनों का, ये माता पिता दोनों का नहीं, दोनों का नहीं है? पुत्र, पुत्र का पुत्रत्व पना क्या? पुत्र का पुत्रत्व पना ये जो है ये स्वतंत्र है यद्यपि, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री लगाओ, पुत्री किसकी और पुत्री का स्वामी कौन है? पुत्री किसकी हुए पिता की है, माता पिता की है, पुत्री है ना, पुत्री का स्वामी कौन?
हस्बैंड,
पति, स्वामी कौन है उसका? माता पिता के घर में उत्पन्न होने पर भी माता पिता उसके स्वामी नहीं है, माता पिता के घर में उत्पन्न होने पर भी उसने वरमाला जिसके गले में डाली, उसने अपनापन जिसने किया वो भिन्न, वो पर, वो पराया, वो दूसरे घर में पैदा हुआ, वो अनजान, उसने जिसमें अपनापन किया बोले वो उसका स्वामी। ये राग पैदा किसके घर में हुए? आत्मा के घर में। क्रोध किसके घर में पैदा हुआ? ये क्रूर आत्मा के घर में पैदा हुआ, तुमने क्रूर का स्वामी कौन?
मैं
मारा नहीं, क्रोध का स्वामी कौन? पुत्री को तो अपना मान रहे हैं, लेकिन वो अपना स्वामी किसे मान रही है? क्रोध को तो हम अपना मान रहे हैं, वो क्रोध अपना स्वामी किसे मान रहा है? वो क्रोध की मरवाला किसके गले में है? इस क्रोध की उत्पत्ति पर के अवलंबन से है, इसलिए ये क्रोध पर का ये राग किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ? आत्मा के लक्ष्य से राग उत्पन्न नहीं होता, आत्मा में उत्पन्न होने पर भी पर के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, इसलिए राग पर का है। राग आत्मा में उत्पन्न होता है लेकिन आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता। राग आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है, आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हुए भी आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता, आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न नहीं होता, विषय के अवलंबन से उत्पन्न होता है, परद्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न होता है, उद्गल के अवलंबन से उत्पन्न होता है। इसलिए अनेक स्थानों पर ऐसा कह दिया गया कि राग का स्वामी तो उद्गल है और राग का स्वामी उद्गल है माने राग उद्गल का है, क्या कह रहे हो? और राग ये कहे, उद्गल ये कहे मेरे में राग नहीं है, उद्गल से मेरे में कहां राग है बताओ? जीव कह रहे हैं ये मेरा नहीं है और उद्गल कह रहा है कि मेरी तलाशी लेके देख लो, मेरे में कहीं राग नहीं है। तो पता है क्या जवाब मिलेगा? हे उद्गल, हे शरीर, तेरे में राग हो या नहीं हो, तू राग को अपना माने या नहीं माने, लेकिन राग तुझे अपना मानता है, इसलिए राग तेरा है। जिस कन्या ने वरमाला जिसके गले में डाली, जिसे अपना स्वामी स्वीकार किया, जिसे अपना पति स्वीकार किया, वो पति कहता है कि मैं तुझे अपना नहीं मानता, कि तुम मानो या नहीं मानो मेरे स्वामी को तुम नहीं। तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा समर्पण तो तुम्हारे प्रति खत्म हो गई बात। तेरे स्वामी तो बोले जहाँ तू पैदा हुई थी, ये नहीं नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, पैदा वहां हुई थी लेकिन संबंध तुम्हारे साथ। राग पैदा आत्मा में हुआ लेकिन राग का संबंध प्रकृति के साथ है, रोदादी में उपयोग ना, रोदादी में उपयोग नहीं है। ये उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय भी कहती है कि मैं रोदादी में जाके क्या करूं, क्यों जाऊं? जिसने अपनापन उसके साथ में किया, इसका संबंध उसके साथ में हो गया, इस बेटी का संबंध उसके साथ में हो गया, इसको उसके घर में भेज दिया, अब ये उसकी हो गई भैया, आप जो भी लेना देना है वो संभाले। समझदार के साथ क्या काम है बताओ, क्या करेंगे? वो यदि पुत्री आती है अपने झगड़े लेकर के, फिर तू निपट कि पिताजी आपकी बच्ची हूँ ये नहीं, तेरे स्वामी हुए वो जाने और तू जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ? इसलिए ये ज्ञान कहता है कि तू मेरे साथ भले ही उत्पन्न हुआ हो, जुड़वा भाई की तरह, जुड़वा भाई बहन की तरह, ज्ञान आत्मा का पुत्र है और ये क्रोधादी पुत्री के समान है, अधिकारी भाव, और ये क्रोधादी रूपी पुत्रियां ये अपनी नहीं है। और ज्ञान कहता है कि तू कितने भी यहाँ उत्पन्न हुई हो लेकिन तेरे से हमारा संबंध नहीं है, संबंध क्या नहीं है, तेरी संपत्ति अलग है और हमारी संपत्ति अलग है, दोनों की संपत्ति न्यारी न्यारी है। ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कह रहे क्रोध पर्याय में कौन व्यापता है भाई साहब? क्रोध पर्याय में तर्क करके तो देखो, क्रोध पर्याय में कहीं आपको ज्ञान का अंश भी नहीं मिलेगा, उद्गली व्यापता है उस क्रोध और आजादी निकाली पर्यायों के अंश अंश में, प्रदेश प्रदेश में उद्गल व्यापता है, चप्पे चप्पे में उद्गल का अधिकार है। और ज्ञान पर्याय में ज्ञान पर्याय में ज्ञान भी आता है, ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यह सब प्रदेश भेद बतला रहे, भिन्नता की बात कर रहे हैं, वेद विज्ञान करा रहे हैं।
प्रदेश भी
प्रदेश भिन्न कैसे प्रदेश भिन्न, दोनों बातें लगा ना। अभी जब प्रवचन काल कथन करेगा तो कहेगा दोनों एक ही प्रदेश है, प्रवचन काल की शैली अलग है और ये समय काल की शैली अलग है। प्रवचन काल वस्तु व्यवस्था को बतलाता है, वस्तु स्थिति को बतलाता है और समय काल श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है। समय काल श्रद्धा की अपेक्षा से बात करता है, समय काल प्रयोजन की अपेक्षा से बात करता है। राग भली आत्मा में उत्पन्न होता हो लेकिन यदि राग को अपना मान करके चलोगे तो समझ लो आप कभी राग से मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्रोधादि से कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आप को क्रोधादि रागादि विषय कषाय इन सबसे भिन्न अनुभव करने का प्रयास, ये उपाय है। ये धारा भय तो आसान तो नहीं लग रहा है, आप कह तो रहे हो शब्दों में तो समझ में आ रहा है लेकिन सीरीज में नहीं आता। ज्ञान पर्याय और क्रोध पर्याय ये दोनों फीलिंग में अलग अलग नहीं आती हमारे, कैसे फील करें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस तरह से हमें ये भिन्न फील होने में आ रहा है, ये अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा शरीर से भी भेद विज्ञान फील नहीं होता। बोलते हैं हम सब तर्क दूंगे तो समझ में आएगा, शरीर चलाने से नहीं चल रहा है समझ में आएगा, छूट जाता है हम निकल करके चले जाएंगे ये बात समझ में आती है, तर्क से युक्ति से मुर्दा पड़ा हुआ है डेड बॉडी है ध्यानी ये सब बातें समझ में आती है क्योंकि हम लोग बुद्धिमान तो है ना सब। लेकिन इतना सब समझते हुए भी जब कभी हम ये कहें कि आप फील करो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, शरीर के कार्य अपनी योग्यता से हो रहे हैं और मेरा कार्य अपने में अपनी योग्यता से हो रहा है, वो फील नहीं कर पाते। चलते समय हम ऐसा फील नहीं कर पाते कि ये शरीर अलग चल रहा है और अंदर में आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से इसके एक चेतनाओं का संबंध रूप अपनी योग्यता से चल रहा है। क्या कह रही है बात सारी बातें करी, महसूस कर सकते हैं अपन या फील कर पाते हैं ऐसा। भोजन करते समय बोले मैं अपने ज्ञान का स्वाद लेता हूँ, रसगुल्ले का स्वाद मुझे नहीं आता, लड्डू का स्वाद मुझे नहीं आता, मिठाई का स्वाद मुझे नहीं आता, इन पदार्थों का स्वाद मैं नहीं लेता। अरे आचार्य देव तो यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं विषयों का स्वाद तू नहीं लेता, भोगों को तू भोगता नहीं, मैं भोग भोगता नहीं, मैं भोगता नहीं, बताओ हमने भोगों को नहीं भोगों ने हमें भोगा है। किसने किसको भोगा है बताओ, हमने नहीं भोगा, हम नहीं भोगते भोगों को, ये भोगों को भोगे कैसे और स्पर्श स्वभावी भोगों का स्पर्श कैसे करे बताओ हमारे, जिसका स्वभाव और स्पर्श है वो भोगों का स्पर्श कैसे करे, जिसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं है ऐसा क्या है भगवान आत्मा वो कैसे करे बताओ मेरे को, कैसे रस दे रहे कैसे स्वाद दे रहे। बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये, स्थूल बुद्धि से भी समझ में आए ऐसी बातें हैं लेकिन थोड़ी सी उपयोग कराना पड़ेगा। सूक्ष्म राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश भिन्नता बतला रहे। देखो उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना, एक बात कही उपयोग में तो उपयोग है क्रोधादि में, बोले क्रोधादि में है क्रोध उपयोग में है क्रोध ना, क्रोध क्रोध में रागराग में है, मान मान में है, चारित्र चारित्र में है, विकार विकार में है, श्रद्धा श्रद्धा में है, अपने अपने में सब ये अपने अपने में एक दूसरे में नहीं हो सकते। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सब अपने नहीं है, इतना ब्रॉड माइंड होकर ये बात करता है सभी ये ब्रॉड माइंड नहीं है, विचार है। अरे बड़ी सब अपने ही, सब अपने ही। क्या सब अपने ही है? ये ज्ञान का राग नहीं है, वगैरह सब अपने ही है। ये दो चीजें एक नहीं हो सकती है, सब अपने कैसे हो सकते हैं? ये पहली गाथा के अंदर भाव कर्म वाली बात कही, फिर दूसरी गाथा में द्रव्य कर्म और नौ कर्म की बात कही, ठीक है ना। ये द्रव्य कर्म और नौ कर्म से भेद ज्ञान करना ये कुछ कठिन काम नहीं है, स्पष्ट ख्याल में आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन नौ कर्म से भेद ज्ञान माने शरीर से भेद ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और विपरीत ताप से रहित इस प्रकार यदि जीव ध्यान करता है तो उपयोग के अतिरिक्त और कुछ भी भाव को नहीं करता। अर्थ वैसे मैंने कर दिया है, फिर भी आप कहें तो पढ़ देता हूँ एक बार, इसके हिंदी अर्थ में क्या कहते हैं। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है, और क्रोध क्रोध नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, वही बात। इसी प्रकार आठ प्रकार के कर्मों में और नौ कर्म में भी उपयोग नहीं, और उपयोग में कर्म वह नौ कर्म नहीं, तो समझ में आ रही है उपयोग कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। कल हमने बात कही थी आपका उपयोग कहाँ है, आप वहाँ हो, ध्यान है ना। हम कहाँ है जहाँ हमारा उपयोग है, तो उपयोग कहाँ है ये बताओ, ये नक्की करो। गहराई से देखने पर उपयोग अपने उपयोग प्रभाव को छोड़ करके बाहर निकलता है। अब प्रवचन तार में लगाओ, जो गाथा 23 भी है, प्रवचन तार की 23 भी गाथा, जैसे न चाहे किसी का 26 भी गाथा, आधा नाण अपमानम नाणम नहीं अपमानम उद्दिष्टम रेयम लोया लोयम तमाम सबरेयम, ये आत्म ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ये प्रमाण है, ये लोका लोक सर्व गति है ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान प्रमाण है। 22, 23, 24, 25 इन सब गाथाओं में प्रवचन कार में क्या गजब व्याख्याएं की है। माने वो कहते हैं ज्ञान आत्मा को छोड़ करके बाहर जाता ही नहीं,
वो क्या जो मुझा की क्या कहते
हैं
सागर से बात कितना जा रही
है, वही उत्पन्न हुई और वही कहाँ जाती है। तो ज्ञान ज्ञान कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है? आप कहेंगे सब ज्ञान तो सबसे ले जाता है, सर्वगत है सब ज्ञान, तो सर्वगत है कि आत्मगत है। अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं जाता, तो ज्ञान पर्याय कितनी बड़ी है कि आत्मा से कम नहीं और आत्मा से ज्यादा नहीं, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बराबर वो ज्ञान पर्याय है। ज्ञान पर्याय तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बराबर क्या है, हाँ जी, इसका नाम है उपयोग है, उपयोग है। आत्मा को छोड़ करके बाहर नहीं, फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्रोध की पर्याय भी तो बताओ पंडित जी, यदि ज्ञान की पर्याय आत्मा को छोड़ करके बाहर नहीं है तो क्रोध की पर्याय भी तो आत्मा को छोड़ करके बाहर नहीं है, तो कैसे प्रदेश भेद बतलाते हो? टीका कारों ने बात कही, देखो टीका पढ़ता हूँ इसकी, अमृतचंद्र क्या बात कहते हैं, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, एक ज्ञान नामक वस्तु है और क्रोध नामक वस्तु है, क्रोध का ज्ञान नहीं और ज्ञान का क्रोध नहीं, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं, ज्ञान के और दोनों वस्तुओं के, जो वस्तुएं अलग अलग होती है उनके प्रदेश अलग अलग होते हैं, ये सिद्धांत है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो शरीर और आत्मा के प्रदेश अलग अलग है, इसीलिए तो हम एक क्षेत्र वाला ही कहते हैं, दोनों के प्रदेश अलग अलग होते हुए भी हम क्या कहते हैं, एक क्षेत्रावगाह, एक ही क्षेत्र में अवगाह है उनका, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोनों का अपने अपने में रहने की योग्यता है, फिर भी आकाश के प्रदेशों की दृष्टि से देखो तो एक ही क्षेत्र है, एक क्षेत्र
भारतीय प्रदेशों की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से भी एक ही प्रदेश।
देखो आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से देखो तो शरीर के और आत्मा के प्रदेश एक ही जगह पर है,
लेकिन ये दोनों भी उनकी पर्याय तो
अब बात करो ज्ञान पर्याय की और दूर पर्याय की। तो आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से देखो तो राग के प्रदेश और क्रोध के प्रदेश एक ही जगह पर है, अरे बस एक ही जगह पर है। तो अब कैसा भेद विज्ञान करें कि एक ही प्रदेश पर है तो ऑपरेशन इतना सूक्ष्म करना है कि क्रोधाधिक निकल जाए और आत्मा रह जाए। जिस जगह पर क्रोध कर जाए उसी जगह पर ज्ञान कर जाए, हाँ ऐसा समझेगा, एक ही जगह पर है। और ऐसा भेद विज्ञान करना है कि वो जो विकार वाला पार्ट था वो तो निकल जाए, ऐसा बारीक चैनी से काम करना है कि वो निकल जाए और वो रह जाए। इसमें से दिखते हैं दो लाइटों जैसे, हॉल में लाइट का प्रकाश एक दूसरे में मिक्स जैसे दिखता है लेकिन सेपरेट है, लाइट बिल्कुल भिन्न भिन्न है। बिल्कुल
एक गुण अन्य गुण रूप नहीं हो सकता,
बिल्कुल अगुरु लघु गुण का काम, अरे आत्मा में अगुरु लघु नाम का गुण नहीं होता तो ज्ञान क्रोधादि सब एक दूसरे में मिल जाते। अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए, तो अगुरु लघु क्या कह दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, हिसाब नहीं होता, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। बात समझ में आ गई, क्योंकि अलग अलग है वो कहा है और ये कहा है, कैसे एक दूसरे रूप होंगे, बोले नहीं नहीं एक ही में रहते हुए दो गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, रूप नहीं होता का मतलब पर्यायों की बात है, ज्ञान का भी ज्यादातर रूप नहीं होता इसका मतलब क्या है, ज्ञान की पर्याय क्या है। और मैं बात कहूं आपसे, ज्ञान पर्याय है किसी में अपनापन नहीं कर सकती, क्योंकि अपनापन करने का काम श्रद्धा गुण की पर्याय का है। तो ज्ञान पर्याय क्या काम कर सकती है बोलो, ज्ञान नहीं कह रहा हो कुछ काम ही नहीं कर सकती, कैसी बात कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञान जानने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता, उसको दूसरा कुछ आता ही नहीं है, ज्ञान को जानने के अलावा कुछ आता ही नहीं, ज्ञान जब जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, श्रद्धा जब अपने कर्म के अलावा कुछ नहीं कर सकती, चारित्र जब लीनता के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये सभी गुण जब अपना अपना काम करते हैं तो कौन किसका काम करे, सब अपने अपने में, ज्ञान ज्ञान में, दर्शन दर्शन में, चारित्र चारित्र में, सुख सुख में, सब अपने अपने में, बोले सब अपने अपने में, कहते फिर ये आधार, बोले आधार आधे बनता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके आधार से नहीं और वो उसके आधार से नहीं। अर्थ दिया यहाँ पर, दो वस्तुओं के जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उनमें एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, एक सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता अलग अलग है जिनके प्रदेश भिन्न है, क्योंकि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उनमें परस्पर में आधार आधे संबंध भी नहीं हो सकता, आधार आधे संबंध मतलब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के आधार से हो, बेस बेस को कहते हैं आधार, ज्ञानम क्रिया के आधार है और ज्ञान गुण आधे है, ज्ञानम क्रिया आधार है ज्ञान गुण आधे, हाँ हाँ ज्ञानन क्रिया के आधार से ज्ञान गुण पकड़ने आता है, इसके आधार से वो पकड़ने आता है, ज्ञानन क्रिया को आधार कहा और भगवान आत्मा को आधेय कहा, ऐसा भी कथन है, हाँ सही स्थानों पर ऐसा भी मिल सकता है, कैसा कि आत्मा के आधार से ज्ञान गुण रहता है, तो आत्मा आधार है और ज्ञान गुण आ रही है। समझ आ रहा है? जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा समझना। यहाँ आधार आदि संबंध कितने घटित होता है, पर्याय और गुण में आधार आदि संबंध घटित होगा। समझना ये बात, जो पर्याय होगी उस पर्याय का जो गुण होगा उसके साथ में उस पर्याय का आधार आदि संबंध घटित हो सकता है, और की पर्याय के साथ में मेरी पर्याय का आधार आदि संबंध घटित नहीं होता, वो मेरे में नहीं रहती।
पूर्ण होता ज्ञान गुण होता वो आधार इसमें से पर्याय लेकिन समझने के लिए
पर्याय को आधार का देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध होता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठा पाती है, ये आधार आधेय संबंध है। ज्ञान क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, ज्ञान क्रिया का ज्ञान से, ज्ञान क्रिया ज्ञान की पर्याय है और ज्ञान के साथ में क्या है अभिन्नत्व। क्या कह रहे हैं वापस सुनो, एक एक शब्द को ध्यान से देखो। ज्ञान क्रिया ज्ञान की पर्याय, एक एक समय ज्ञान की पर्याय बन गई। इसका ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे ज्ञान ज्ञान में ही है, वो पर्याय किससे अभिन्न है? ज्ञान पर्याय अपने स्वरूप से अपने गुण से, तो इसलिए ज्ञान ज्ञान में ही है। आगे नाइन देखो क्या कहते हैं। और क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने से ज्ञान परिणति ज्ञान से अभिन्न है, क्रोध परिणति क्रोध से अभिन्न है। क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित वे क्रोधादि क्रोधादि में ही, क्रोधादि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और ज्ञान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है माने विराजमान है। और कब अनादि अनंत तात्पर्य बताते क्या कहते हैं देखो, तात्पर्य यह है कि ज्ञान का स्वरूप ज्ञानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधार आधेय है और ज्ञानन क्रिया आधार है। वापस बोलता हूँ, बहुत बारीकी से देखना, शब्द थोड़े से कठिन लग सकते हैं, नए कभी नहीं सुने ऐसे लगते हैं। ज्ञान का स्वरूप ज्ञानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है और ज्ञानन क्रिया आधार है। ज्ञानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि ज्ञानन क्रिया और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। निष्कर्ष यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है।
आधार
और अलग पर और आधार ये दोनों दो नहीं है ना, इसलिए इनमें आधार आधे पना, जिसमें आधार आधे पना घटित हो गया इसका मतलब वो दो चीजें नहीं है। क्या कहा? जहाँ आधार आधे पना घटित हो गया जिनमें, इसका मतलब वो दो नहीं है।
क्रोध की बात करते वो स्वीकार नहीं है, क्रोध क्रोध ही है,
इसीलिए क्रोध का आधार आधे संबंध ज्ञान के साथ में नहीं होता, वो भिन्न गुण की पर्याय है। चलो पूर्ण करते हैं बात को। इसी प्रकार क्रोधादि क्रोधादि नहीं है, इनको भी घटित कर लेना चाहिए। क्रोधादि भाव कर्मों में, ज्ञानादि द्रव्य कर्मों में तथा शरीर आदि नौ कर्मों में ज्ञान नहीं है। मैं और कहूँ थोड़ा सा मोटी बुद्धि से तो मैं ये कह सकता हूँ, क्रोध को अंधा नहीं कहते, क्रोध अंधा होता है। क्रोध और ज्ञान की भिन्नता बताए ये अपन, तो हम ये नहीं कहते जब क्रोध उत्पन्न होता है तो ज्ञान को खा जाता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है वहाँ क्रोध नहीं होता, समझ है तो क्रोध नहीं होगा और क्रोध है तो समझ नहीं होगी। छोटे मोटे समझ में आ रहे हैं नहीं दोनों चीजें, दोनों अलग अलग है तो क्रोध अलग समझ में आ रहा है और ये अलग समझ में आ रहा है। क्रोध बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है हमारे को अलग, और ज्ञानहार समझदार ज्ञान का पिंड ये अलग समझ में आ गया। तो बोले दोनों भिन्न भिन्न है और दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होने से जब ये धारा अंदर में बरसती है, जब अंदर में अविरल धारा बराबर बरसती है कि क्रोध क्रोध में है और ज्ञान ज्ञान में है, तो चूंकि ज्ञानम क्रिया मेरी क्रिया है और क्रोध क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, इसमें क्रोध से उपयोग हटता है और उपयोग स्वभाव में उपयोग एकाग्र होता है, उपयोग का रस बढ़ता चला जाता है और क्रोधारी का रस टूट जाने से क्रोधारी का अभाव हो जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये उपाय है निर्वाण प्राप्त करने का और मुक्ति प्राप्त करने का। हम सभी इस विधि से मुक्ति प्राप्त करें इस भावना से अभी की बात करें। पर्याय है ना, आपने लाइट जलाई और अंधकार चला गया, मैं आपसे पूछता हूँ कि अंधकार कहाँ गया? है नहीं ना, खत्म ही हो गया वो, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है। द्रव्य तो अस्तित्व वाला है, द्रव्य गुण ये तो अस्तित्व है, इनके तो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट हुई विलीन हो जाती है।
तो पर्याय
है, क्रोध अवस्था है। मैं कहता हूँ आपका बचपन कहाँ गया? तो अवस्था थी, अवस्था थी।
ये स्वरूप संज्ञा बिना पाम्यो दुःखं तमस्याद्युक्तेन